नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से अग्निपथ आ गया है। देश के कई जिलों में अग्निपथ के खिलाफ युवा इस भयंकर गर्मी में लखपत सड़कों पर उतर आए हैं। कई हिंसा तो कहीं से लाठी चार्ज की खबरें हैं। क्या अब भी इन प्रदर्शनों को गोदी मीडिया की शब्दावली में कुछ लोगों का प्रदर्शन कहा जा सकता है, जैसा कि किसानों के आंदोलन को आज तक कुछ किसानों का आंदोलन कहा जाता है? क्या सरकार को कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ सकती है? जिस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, चिंता में डालने वाली हैं। सरकार की हर बात ठीक से समझ जाने वाले युवा इस बात को ठीक से क्यों नहीं समझ पा रहे कि 4 साल की सेना की नौकरी उनके लिए ठीक होगी? भूतपूर्व होने के लिए लोग 40-40 साल नौकरी करते हैं, एक ही जगह काम करते रह जाते हैं, तब जाकर भूतपूर्व होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अग्निपथ में फायदा है कि आप केवल 4 साल में भूतपूर्व नहीं होंगे, बल्कि उसके बाद हो सकता है जीवन में कई बार भूतपूर्व होने का सुख मिले। युवाओं के लिए इतना सब कुछ ठीक से सोचा गया, तब भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह ठीक नहीं लगता। बिहार के नवादा में नौजवानों ने बीजेपी के दफ्तर में ही आग लगा दी। अगर यही हिंसा उन लोगों ने की होती, कोट अनकोट उन लोगों ने, तो अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। क्या बीजेपी के दफ्तर को जलाने वाले नौजवान इस बात से बेखबर हैं? इतने आक्रोश में हैं कि बिना हिंसा के प्रदर्शन नहीं कर सकते? नवादा से बीजेपी की विधायक अरुणा देवी की इस गाड़ी को देखिए। इसमें अरुणा देवी की गाड़ी का क्या कसूर है जिसे चोट पहुंचाई गई?
हम लोग अचानक आए, उसके बाद झंडा बोर्ड नोच के फेंक दिया और ईटा पत्थर बरसाने लगा पूरा। अभी भी ईटा जो है 3-4 गो गाड़ी के अंदर है, शीशा पूरा चूर दिया, बॉडी चूर दिया, गाड़ी के अंदर बांस है और गार्ड के चोट लगा, ड्राइवर के लगा।
यही नहीं, कैमूर में भी रेलगाड़ी में आग लगाई गई, भभुआ में भी इंटरसिटी एक्सप्रेस जला दी गई, छपरा में भी नौजवानों ने रेलगाड़ी में आग लगा दी। यहाँ पर भीड़ ने बीजेपी के विधायक के घर पर भी हमला किया। नौजवान उनकी छत पर चढ़ गए और वहां से बीजेपी का झंडा नीचे फेंक दिया।
शाम तक से कुछ लोग प्रशासन में लगभग 200 से ज्यादा लोग रहेंगे, उसमें कांग्रेस समर्थक झंडा लिए और आरजेडी समर्थक झंडा लिए हुए आ रहे थे। हमारे आवास पर हमारा नाम लिखा हुआ है, विधायक छपरा लिखा हुआ है, उनको गुस्सा आया होगा और उन्होंने जो कोर्ट की प्रक्रिया सुनी थी।
गोपालगंज में भी ट्रेन फूंक दी गई। आंदोलनकारियों ने गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर रोककर आग लगा दी। गनीमत है कि ऐसा करने वालों को मीडिया ने उपद्रवी और बलवाई दंगाई नहीं लिखा है। ट्विटर पर कोई दंगाई लिखने की जल्दी में नहीं लग रहा, ताकि बैलेंस बन जाए। जिस तरह से उन लोगों के समय, कोट अनकोट उन लोगों के समय लिखा जाने लगा था, क्या ट्रेन जलाकर युवाओं को लगता है कि आक्रोश का यही सही तरीका है? क्या वे भूल गए कि 2-4 दिन पहले तक इस बुलडोजर का वे स्वागत कर रहे थे कि पत्थरबाजों पर यही कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुए? क्या रेल टैक्स पेयर की संपत्ति नहीं है? आरा के रेलवे स्टेशन पर तो बकायदा पत्थरबाजी हुई है। इस तरह से ट्रैक से गिट्टियां उठाकर चलाई गई। प्लेटफॉर्म को तोड़कर युवाओं को क्या मिला? बिहार में युवाओं पर काबू पाने के लिए कई जगहों पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। सवाल सेना में भर्ती का है और सजा रेल यात्री को मिले, यह ठीक नहीं। रेल पथ और रेल कोच को नुकसान पहुंचाना सरासर गलत है। क्या इन युवाओं को इतना भरोसा है कि हिंसा के बाद भी सरकार हर्जाना वसूली के केस नहीं करेगी, मीडिया उपद्रवी और पत्थरबाज नहीं लिखेगा, घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? आर यू श्योर अबाउट दिस? बक्सर, जहानाबाद, चतरा, गोपालगंज, नालंदा, मुंगेर, मोतिहारी, छपरा सहित बिहार के कई जिलों में सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवान भड़क उठे हैं। इन सभी को हिंसा से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांग के अनुरूप में कि मेरा यह मांग है वो चार पांच।
यहाँ लाउड स्पीकर से अधिकारी समझा रहे हैं कि युवाओं को जो भी कहना है लिखित ज्ञापन में दीजिए। क्या सरकार इन ज्ञापनों को पढ़ती भी होगी?
शांत हो, पहले बात सुनो सरकार।
यूपी के कई जिलों से प्रदर्शन और हिंसा की खबरें हैं। अलीगढ़ में सोमना एनएच हाईवे पर युवाओं के द्वारा रोडवेज बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी आशंकित हैं कि पूरी होगी या नहीं, क्या उसे भी अग्निवीर योजना के हिसाब से लागू किया जाएगा। बुलंदशहर में पुलिस ने बेहद हल्के बल का प्रयोग किया और संकेत दिया कि प्रदर्शन अनुशासित रहे और हिंसा न हो। इसके अलावा आगरा, उन्नाव, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हरियाणा के रोहतक और पलवल में भी प्रदर्शन हुए। पलवल में प्रदर्शनकारियों ने डीसी ऑफिस पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गईं, पुलिस को अपनी रक्षा में लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई, फायरिंग की भी खबर है। हरियाणा के रेवाड़ी में इस तरह से लाठी चार्ज हुआ, युवाओं को भेड़ बकरियों की तरह हांकने वाला वर्दी में नहीं दिखा। कौन है जो वर्दी में नहीं है और इतनी जोर से मार रहा है? वैसे रेवाड़ी में वर्दी में भी पुलिस युवाओं को दौड़ाती नजर आई। इसे देखकर सितंबर 2013 में रेवाड़ी की वो रैली याद आ गई जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था बचपन में वे सेना में जाना चाहते थे, बचपन के उनके सपनों को ये नौजवान पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इस तरह से लाठियों से मार रही है। इसके अलावा जम्मू, राजस्थान के सीकर में भी प्रदर्शन हुए हैं और पंजाब के कई जिलों में भी प्रदर्शन की खबरें हैं।
कल या परसों पता चला कि हम लोग का जो सी एग्जाम होने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो बताइए सर हम लोग डेढ़ साल से लड़के लोग इंतजार कर रहे थे, अब हम लोग क्या करें
सर? डेढ़ साल से हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके रखे हुए हैं, पर हम लोग डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कैंसिल कर दिया गया। डेढ़ साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, डेढ़ साल से लगे हुए हैं, तीन साल से भर्ती प्रक्रिया बंद है सर, और ऊपर से टीओडी लागू हो गया।
लड़का एग्जाम निकाल के बैठा था, माँ बाप जमीन बेच के पैसा दिया पढ़ने के लिए, अब एग्जाम कैंसिल हो गई, ना पैसा है ना खाने के लिए उपाय है, तो क्या करेगा सर? घर में अभी तक घर वाला को नहीं बताया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, क्या करेंगे सर बताइए?
ऐसा होगा तो घर वाला भी
ऐसे में ये सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन सरकार के कहां तक जू तक नहीं रखती है सर, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा।
हम इन प्रदर्शनों को खारिज नहीं कर रहे, लेकिन इस हिंसा का क्या मतलब है? क्या इसलिए कि उन्हें कोई दंगाई नहीं कहेगा, उनके लिए गोदी मीडिया बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर बहस नहीं करेगा? आप फर्क देख पा रहे होंगे, कारण भले अलग अलग हैं, गुस्सा एक ही प्रकार का होता है और पत्थर तो एक ही होता है, आगजनी भी एक समान की होती है, मगर एक जगह आंदोलनकारी है, एक जगह उपद्रवी, एक दंगाई है और एक दंगाई नहीं है। आप इन घटनाओं की केवल सपाट व्याख्या नहीं कर सकते। सवाल तो बनते ही हैं कि पिछले 8 साल में रोजगार को लेकर ऐसे कितने ही प्रदर्शन हुए, लेकिन हवा क्यों हो गए? हमारा सवाल उन युवाओं से है जिनके एक बड़े वर्ग ने जिस तरह से रिटायर्ड अंकिलों के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में हर तरह के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के दमन पर आनंद उठाया, उसे सही ठहराया, उन्हें ऐसा किस आधार पर लगता है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार और रिटायर्ड अंकिल सपोर्ट करेंगे? लोकतांत्रिक आंदोलनों को सपोर्ट करने वाला समाज बचा ही कहां है? वह तो बुलडोजर से घर गिराने का सपोर्ट करने वाला समाज हो गया है। डू यू गेट माई पॉइंट? युवाओं को समझना चाहिए कि हिंसा का रास्ता छोड़ना ही विकल्प है, या जरा नहीं भयंकर हिंसा। इतनी हिंसा काफी है कि सरकारें इनके प्रदर्शन पर विपक्ष की सुनियोजित साजिश का लेबल चिपका दे। इतनी धूप में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। गनीमत है कि ईडी ने राहुल गांधी को उलझा रखा है, वरना गोदी मीडिया अभी तक इसे मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस की सुनियोजित साजिश करार दे दिया होता, बल्कि दिया भी जाने लगा है अलग अलग तरीके से। सरकार को सुनाने से पहले ये युवा एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिलों और रिश्तेदारों के पोस्ट चेक कर लें, पता चल जाएगा कि उनके इस प्रदर्शन में समाज उनके साथ नहीं है। कीलें बिछा दी गई थी किसान आंदोलन के आगे, तब भी इस लेबल से छुटकारा नहीं मिला कि यह कुछ किसानों का आंदोलन है। एक साल लगे किसान आंदोलन को अपनी पहचान बनाने में। 700 से अधिक किसानों की अलग अलग कारणों से जान चली गई। जाड़ा, गर्मी, बरसात में कांपते, जलते, भीगते रहे, तब जाकर सरकार ने गंभीरता से लिया और कृषि कानूनों को वापस लिया। प्रदर्शन करने वाले युवा जब YouTube में प्राइम टाइम के इस एपिसोड को बार बार देखेंगे, तब जाकर बात समझ आएगी कि धरना प्रदर्शनों की साख समाप्त हो चुकी है और इसमें उनका भी सहयोग रहा है। इसलिए हर हाल में युवाओं को हिंसा से बचना चाहिए, रेल और रोड जाम से किनारा कर लेना चाहिए। अभी से ही वही सवाल दोहराया जाने लगा है जो किसान आंदोलन के समय कहा जाता था कि किसानों ने कानून को नहीं समझा, और अब कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना आए 2 दिन हुए हैं, युवा इतनी जल्दी कैसे समझ गए, कहीं कोई साजिश तो नहीं।
पिछले 2019 में फॉर्म भरा गया था, 20 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और 21 के अप्रैल में मेडिकल क्लियर हो गया। उसके बाद से डेट पे डेट दिया जा रहा है, हमारा एग्जाम 8 बार डेट निकालकर पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में ना कोई युवा, नहीं कोई नेता, ना कोई और चिंतित है।
इसमें ना तो कोई छावी नहीं फौजी बन सकता जी, क्योंकि ट्रेनिंग भी कम से कम 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जी, और लगभग फौजी को पूरा तैयार होने के लिए 4-5 साल तो लगते हैं जी। ठीक है, 4-5 साल में रिटायर कर रहे हैं, रिटायर करने के बाद ना कोई पेंशन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और जो उनकी भर्ती की प्रक्रिया वो सेम कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का सब तरीके सब नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से 4 साल की मजदूरी कर दी गई है, तो फौज की नौकरी जो वो बहुत रिस्की नौकरी होती है। ठीक है जी, कब कहां से गोली लग जाए कोई पता नहीं होता।
वन रैंक वन पेंशन, नो रैंक नो पेंशन, अग्निपथ की योजना आने वाले समय में सेना को पेंशन के दबाव से हल्का कर सकती है। लाखों बार युवाओं ने कहा कि सांसदों को सांसदी और विधायकी की भी पेंशन मिलती है, किसी किसी को 2-2 तो किसी किसी को उससे अधिक। अन्याय नहीं, ये घोर अन्याय है। युवा नाराज हैं कि एक झटके में सेना में जवानों की नौकरी 15 साल से घटाकर 4 साल कर दी गई, मगर सांसदों विधायकों की पेंशन जारी है, उसे बोझ नहीं माना जाता। अग्निपथ योजना को लेकर सेना की तैयारी करने वालों के मन में कई सवाल है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर पर नाराज युवाओं से कारण पूछे तो जवाब आए हैं। वरुण ने उसे पत्र में बदलकर ट्विटर के माध्यम से सरकार को प्रेषित कर दिया है। रेल पथ और कोलतार पथ पर अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि जब 15 साल तक सेना में नौकरी के बाद रिटायर होने पर कॉरपोरेट जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब 4 साल वालों को कैसे मिल जाएगी। लोग बहुत गरीब घरों से आते हैं, अग्निवीर की सैलरी बहुत कम है, ये बात तो सही है। PIB ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार पहले साल में महीने की सैलरी 21,000 हाथ में आएगी, हर साल 2,500 के करीब बढ़ेगी, दूसरे साल में 23,100 रुपए मिलेगी, चौथे साल में सैलरी 28,000 के करीब मिलेगी। युवाओं का कहना है कि ट्रेनिंग पर जो खर्चा होगा वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि 75% अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे। हर साल 75% बेरोजगार होंगे, युवाओं में असंतोष और हताशा बढ़ने लगेगी।
कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना तो 8 महीने ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा, तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं।
30-30 साल की उम्र में क्रिकेट खिलाड़ी बिजली की गति से क्रीज पर भागते रहते हैं, कोई उनकी उम्र और क्षमता पर शक नहीं करता। फिर सेना को फुर्तीला बनाने के लिए 21 साल ही अंतिम सीमा है, इसे क्यों बेस्ट बताया जा रहा है? क्या 21 साल के बाद जवानों में बहादुरी का जज्बा खत्म हो जाता है, उनकी फुर्ती ढीली पड़ जाती है? NCERT की किताब में परमवीर चक्र विजेताओं की उम्र देखी जा सकती है। सूचक ने एक औसत निकाला कि 21 परमवीर चक्र विजेताओं की औसत उम्र 30 साल के आसपास ठहरती है जब उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। इस लिस्ट में 21 में से 11 विजेताओं की उम्र 30 या 30 से कुछ ज्यादा थी। 21 साल या उससे कम की उम्र के 2 परमवीर चक्र विजेता हैं। 41 साल की उम्र में भी परमवीर चक्र मिला है और 42 साल की उम्र में भी। बाना सिंह जी को तो 38 साल की उम्र में परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र इस देश में बहादुरी का, वीरता का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। मेरठ से लेकर गहमर तक, झुंझुनू से लेकर बक्सर तक, अलीगढ़ से लेकर महेंद्रगढ़ तक, कई राज्यों के कई जिलों में अग्निपथ के खिलाफ युवा सड़क पर उतर आए हैं। इन्हीं जिलों में युवा सेना में भर्ती की तैयारी में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी गला देते हैं। आज हबीब आरा में थे। आरा के इस मैदान में सुबह सुबह 200 नौजवानों की टोली भर्ती की तैयारी में लगी थी। प्रदर्शन भी हो रहे हैं मगर तैयारी भी चल रही है। सवाल है कि क्या युवा अग्निवीर के लिए होने वाली 46,000 भर्तियों का बहिष्कार कर देंगे? ऐसा तो अभी तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब आप इन युवाओं की लगन को देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि 4 साल की नौकरी की इस क्रांतिकारी योजना ने इनके सपनों को ध्वस्त कर दिया है। देश भर में इसी तरह से नौजवान तैयारी करते हैं। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जाकर देखिए तो पता चलेगा कि सेना में भर्ती होने का सपना केवल नौकरी का सपना नहीं है। बहुत सारे युवा पुरानी निकली हुई भर्तियों को लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि उनकी तैयारी में कई साल खप गए, अब उन भर्तियों का क्या होगा।
मैं भी एक बिहार का ही लड़का हूं और एक सबको जैसे हम लोग गरीब परिवार के ही लड़के हैं। कोई बड़ा नेता होता का तो कोई लड़का नहीं है हम लोग। हम लोग को देखिए सर, 5 साल इसे हम लोग का कोई आर्मी एक सपना है, हम लोग का जुनून है, जज्बा है हम लोग का कि आर्मी ज्वाइन करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, एक देशभक्ति है। पैसा कमाना होता तो और भी कई जगह था हम लोग के लिए। आप हम लोग का जो ये 4 साल का जॉब दिए उसके जगह पे 25 साल कर देते हैं, 40,000 की जगह हम लोग 20,000 देते हैं। हम लोग पैसा का कोई भूखा नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारा हक है वो देना चाहिए। 4 साल 5 साल से तो लड़का दौड़ते दौड़ते अपना शरीर को खून को पसीना में बहा दे रहा है, उससे क्या होगा। 4 साल तैयारी करो, 5 साल से तैयारी करो और उसके बाद क्या करो, 4 साल का जॉब करो, उसके आगे क्या करेंगे हम लोग आगे जाके। कि बोल रहे हैं कि 4 साल ये और भी देश है अदर्स कंट्री किया है, तो अदर्स कंट्री के देखते हुए चलना है आपको। अपना रास्ता खुद बनाइए मोदी जी। लड़का जब खुद अपने मेहनत से आर्मी के लिए जाता है, कभी पता है कि वो लड़का कैसे आर्मी बनता है, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। 4 बजे 3 बजे उसकी सुबह होती है, दोपहर 40 डिग्री सेल्सियस में लोग कूलर में बैठते हैं और एसी में बैठते हैं। उस समय दोपहर में कई लड़का दौड़ता है, सुबह दौड़ता है, शाम दौड़ता है, दोपहर दौड़ता है, 3-3 टाइम दौड़ कर कलेजा सुखा लेता है अपना आप को। इसका एक जुनून है, एक जुनून है हम लोग का। कितने लड़का तो बिजनेस छोड़कर, हम खुद बीएड के एडमिशन कराए हुए, हम छोड़कर आर्मी ज्वाइन करना के एक शौक है हमारा कि आर्मी ज्वाइन करेंगे।
सदन में बैठे सदन बीरों ने 40 डिग्री सेल्सियस के एसी के तापमान में बैठकर -40 डिग्री और 16 डिग्री पे एसी में बैठकर और सदन बीरों ने अग्निवीर का नाम दे दिया और उसका वर्क कितना घटा दिया, 17 साल से 4 साल। एक वेल ट्रेंड आर्मी को तैयार होने में, एक सोल्जर को तैयार होने में कितने दिन लगते हैं, मिनिमम 3 साल। एक वेल ट्रेंड सोल्जर 3 सालों में तैयार होता है और आप कितने दिनों का वर्क दे रहे हैं हमने, 4 साल। हमें सर ट्रेनिंग कितने दिनों की दी जा रही है, इनके प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि 10 सप्ताह से 6 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग को देखकर आप हमें अरुणाचल के और पाकिस्तान के बॉर्डर भेजिएगा, जहाँ की अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या करेंगे हम, चीन की ट्रेंड आर्मी और पाकिस्तान की ट्रेंड आर्मी के आगे 6 महीने की ट्रेनिंग लेके जाके मरेंगे। मोदी जी ये बताइए कि आपको तो जाना नहीं है, जाना तो हम जैसे बच्चों को है ना।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की वेबसाइट पर 2017 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार नेटो के 22 सदस्यों की सेना के सभी जवानों की औसत उम्र 38 साल से ज्यादा है। जो सैनिक मोर्चे पर तैनात है उनकी औसत उम्र 35 साल से अधिक है। भारत में औसत उम्र 26 साल से कम करने की बात हो रही है। अमेरिकी सेना की इस वेबसाइट पर लिखा है कि सक्रिय सेना के किसी भी ब्रांच में शामिल होने के लिए न्यूनतम 17 साल का होना जरूरी है। थल सेना के लिए उम्र 35 साल, नेवी, नौसेना और वायु सेना के लिए उम्र 39 साल है, स्पेस फोर्स में 39 साल की उम्र है। यह स्पष्ट नहीं कि प्रवेश करने की अधिकतम आयु 39 साल है या सेना में बने रहने की अधिकतम आयु 39 साल है। ब्रिटेन में सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु 16 साल है और अधिकतम 36 साल। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने तो अधिकतम आयु सीमा ही समाप्त कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में शामिल हो सके। 40 साल से अधिक के उम्र वाले भी सेना में शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने हाल ही में ऐसे कानून पर दस्तखत कर दिए। इसके पहले रूस में सेना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 साल और 40 साल तक अधिकतम सेना में इस उम्र के लोग रह सकते थे। देश के कई राज्यों में भड़के आंदोलन अगर एक तस्वीर तो दूसरी तस्वीर यह भी है, जिससे पता चलता है कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीतिक नफा नुकसान के प्रति प्रधानमंत्री कितने आश्वस्त। आज प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे, धर्मशाला में रोड शो कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश से भी लोग सेना में जाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी लोकप्रियता बता रही है कि आने वाले दिनों में जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं वे अग्निपथ योजना की खूबियों को समझ जाएंगे। वही तो कहा करते हैं कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। इसी आधार पर नोटबंदी का समर्थन भी किया गया, तो अब अग्निपथ का समर्थन क्यों नहीं कर सकते, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। आज रक्षा मंत्री ने हर तरह के मुश्किल इलाकों में चलने वाली गाड़ी चलाई, अपने साथ जवानों को बिठाकर बारामूला से बाड़ाखाना पहुंचे। क्या यह संकेत दिया जा रहा है कि सरकार अग्निपथ पर आगे बढ़ चुकी है, उसे अपनी इस योजना पर बहुत भरोसा है और युवाओं पर भी भरोसा है कि जल्दी ही उनका गुस्सा शांत होगा और वे इस योजना की भर्ती में शामिल होने लगेंगे। बिहार में जदयू ने युवाओं से बात करने की सलाह दी है।
भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए।
अपील करेंगे छात्रों से शांति बनाए।
हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें।
किसान आंदोलन की तरह ही सरकार को कुछ करना होगा। तब सरकार ने तय किया था उस समय के मंत्री से लेकर सांसद हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगे। हालांकि आज ग्वालियर में भी अग्निपथ योजना का विरोध हुआ।
नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद।
लेकिन कृषि कानूनों के समय किसान सम्मेलन शुरू हो गया था, जिसमें उन किसानों को भी लाया गया जो किसी ना किसी योजना के लाभार्थी रहे। इन युवाओं में भी कोई ना कोई लाभार्थी होगा, उन्हें लाकर अग्निपथ की योजना समझाई जा सकती है। क्या इस बार भी बीजेपी अपने सांसदों को और सरकार में अपने मंत्रियों को उन जिलों में भेजेगी जहां के युवा सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, ताकि नौजवानों का गुस्सा शांत हो? सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से सवालों के उत्तर भेजे जाने लगे। इसमें सरकार ने बताया है कि यह बात सही नहीं है कि अग्निपथ योजना से भविष्य असुरक्षित होगा। जादुई सूत्रों के अनुसार 4 साल बाद जो नौजवान उद्यमी बनना चाहेंगे उनके लिए वित्तीय पैकेज और बैंक से कर्ज की योजना है। जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स होगा। जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी उनके नौकरियों के कई अवसर खोले जा रहे हैं। क्या यह जवाब काफी है कि अग्निवीर की भर्ती पुरानी भर्ती की तुलना में ज्यादा होगी? भर्ती की संख्या का सवाल तो है, लेकिन युवाओं का मूल सवाल है कि 4 साल के लिए भर्ती क्यों हो रही है? वे 4 साल बाद निकाले जाने के लिए तैयार नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी एक पोस्टर जारी कर अग्निपथ की खूबियां बताई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि 4 साल के अनुशासित जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। हमारा सवाल है, तो क्या सेना की भर्ती को स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर बना दिया जाएगा? तीसरा पॉइंट है जो बहुत जोरदार लगा। मेरा दावा है कि इसे सुनते ही आग बबूला छात्र बगुला भगत बन जाएंगे। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी मिलेगी, करियर में एब्जॉर्प्शन का चांस क्या कम है? पता नहीं हिंदी के पर्चे में एब्जॉर्प्शन क्यों लिखा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी मिल जाएगी, ये बहुत है। चौथा पॉइंट भी उससे शानदार है। इसमें तो उल्टा सवाल पूछा गया है कि कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की पूंजी जमा होती है। इसके बाद समझने के लिए कुछ नहीं रह जाता। वैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर पर जाकर आप और भी पॉइंट देख सकते हैं और समझने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी यह पोस्टर पढ़ लेने के बाद अगर किसी को समझ ना आए तो वह पक्का गोदी मीडिया नहीं देखता होगा। इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है कि पूछिए मत। एक सवाल तो यह भी है कि आप में से कितने लोग 24 साल की आयु में सेटल हो जाते हैं। दोहरा देता हूं कि आप में से कितने लोग 24 साल की आयु में सेटल हो जाते हैं। यह सवाल क्यों है समझ नहीं आया। अगर सरकार यह सवाल युवाओं से पूछ रही है तो क्या इसका जवाब यह हो सकता है कि 24 साल की उम्र में अगर कोई सेटल नहीं होता तो क्या आप उसे 4 साल के बाद 24 साल की उम्र में निकाल देंगे? यही वो तर्क है जिसे व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिल तुरंत स्वीकार कर लेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन युवा भी फॉरवर्ड मैसेज को पढ़कर मान ही जाएंगे। उद्योगों की महान संस्था फिक्की ने भी ट्वीट कर सरकार की इस नई योजना का स्वागत किया है। फिक्की ने कहा है कि इस योजना से उद्योगों के लिए अनुशासित और कौशल से लैस युवा मिलेंगे। कोई नहीं पूछ रहा कि 2015 से चल रहा स्किल इंडिया अभियान कहां चला गया, उससे कौशल युक्त युवा उद्योगों को क्यों नहीं मिला जो अब सेना के रास्ते से अनुशासित और कौशल युक्त युवाओं का बहाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। यह प्रस्ताव मिलिट्री ऑफिसर विभाग में मिलिट्री ऑफिसरों द्वारा तैयार किया गया। यह विभाग सरकार ने ही गठित किया है।
खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून।
कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस योजना को स्वीकार किया है, सराहा है। सरकार ने हल्के में लिया होता तो इसके लॉन्च पर रक्षा मंत्री के साथ साथ सेना के तीनों प्रमुख नहीं आते। इतनी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम होती है। सेना के तीनों प्रमुखों का साथ आना बता रहा है कि सरकार अग्निवीर योजना से पीछे नहीं हटेगी।
संकल्प कर।
अगर कहा जाता है कि 20 लाख जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं उस पे 6 लाख तो विधवाएं हैं, तो अगर उससे तकलीफ होती है तो 52 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वहां ऐसा काम क्यों नहीं होता? वो तो दुगना है पेंशन एक्सपेंडिचर। और ये जो 20 लाख डिफेंस के पेंशनर्स हैं उस पे 6 लाख तो सिविलियन पेंशनर्स, वो कोई फौजी नहीं। तो अब ये एक तो वो है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो यूथ प्रोफाइल, जो युवा प्रोफाइल है, वो 32 साल से 35 साल तक मतलब कम होगी। एक कॉम्बिनेशन होगा, लंबी दूरी की सर्विस होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्विस होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, एक युवा जो फौज में आएगा वो अनसर्टिनिटी में आएगा कि क्या मैं परमानेंट रहूंगा कि क्या मेरा यह शॉर्ट टेन्योर रहेगा। तो उससे उसके बर्ताव से, उसके अप्रोच से, ओरिएंटेशन में काफी प्रभाव, एक तरीके का प्रभाव हो सकता है।
तीनों सेनाओं के लिए ये उतना ही फायदेमंद है। कई बार लोग बोलते हैं वायुसेना में टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है, बट आप देखते हैं कि आज का युवा हम जैसे लोगों से ज्यादा ही टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो यूज करता है। जहाज पे जो काम कर रहा है, पहले खुद मशीन से काम करते थे, आजकल एक आईपैड लेके उसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उसको हमने देखा है, जो यंगस्टर्स आते हैं आजकल वो ज्यादा जल्दी इसको वो एसिमिलेट कर लेते हैं एंड उनकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा है। इसीलिए इन अग्निवीरों को भर्ती करके हमारी एफिशिएंसी बोथ ऑपरेशनल, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर और बढ़ेगी।
राष्ट्रीय लोकदल और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी विश्नोई ने ट्वीट किया है कि वे इस मुद्दे पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में युवा पंचायत करने जा रहे हैं। जयंत ने मांग की है कि सरकार अग्निपथ योजना वापस ले। राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना के विरोध में ट्वीट किए हैं। राहुल ने लिखा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी,
जिन नौजवानों के लिए इस योजना को बनाया है वही सड़कों पर आ रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में जाते हुए वो देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और इस प्रकार की योजना बनाने से पहले विचार विमर्श हो। लोग जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। देश में उद्योग लगे, निवेश हो, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की योजना की जो घोषणा हुई है उसका इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि इस अग्निपथ योजना को वापस लें, क्योंकि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो एक कारगर योजना लेकर आए जो स्थायी रूप से लोगों को रोजगार मिले।
क्या विपक्ष एक बार फिर जल्दी कर रहा है? आगे का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त के आक्रोश या प्रदर्शन को नीतियों से नाराजगी तक ही सीमित समझना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर राहुल गांधी चेतावनी देते हैं कि प्रधानमंत्री युवाओं की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो याद रखा जाना चाहिए कि अपवाद को छोड़ दें तो जब भी रोजगार का मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद के चुनाव में बीजेपी को ही युवाओं ने वोट दिया है। अगर अग्नि परीक्षा है तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कई अग्नि परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। जिस वक्त कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें आ रही थी, एक तस्वीर यह भी आ रही थी कि प्रधानमंत्री हिमाचल में रोड शो कर रहे हैं और लोग फूल बरसा रहे हैं। यही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने योग को लेकर एक वीडियो लिंक भी शेयर किया है।
Bhramara means a black bee. During the exhalation of this pranayam, the sound produced resembles the buzzing of a black bee.
इस वीडियो में भ्रामरी प्राणायाम का होना संयोग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब शानदार है। मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, इससे मन की उग्रता समाप्त हो जाती है, हताशा और बेचैनी भी निकल जाती है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए ताकि मन शांत हो, और मन शांत होगा तो अग्निवीर परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे जो निकलने ही वाला है, और वहां भ्रमण करते नजर आएंगे जहां मंडराते रहे हैं। याद रखिएगा वो हेडलाइन जो छपने वाली है, अग्निपथ योजना की भर्ती निकलते ही लाखों युवा फॉर्म भरेंगे और डंका बज जाएगा, और फिर आज जो भी इसके विरोध में बोल रहे हैं वो ट्रोल होने लगेंगे। सावधान रहिएगा, और 4 साल में रिटायर होने की योजना अच्छी लगती है तो आप भी रिटायर हो जाइएगा, बाकी ब्रेक ले लीजिएगा। क्या बुधवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस की सक्रियता सीमा पार कर गई, और गेट पर जो धक्का मुक्की हुई उसमें कई पत्रकारों को चोटें भी आई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर राज्यसभा में शिकायत की है और दिल्ली पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है।
कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस का यूं घुसना। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस द्वारा लात मारा जाना। महिला सांसद और कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटना और दुर्व्यवहार, ये सब वे तस्वीरें हैं जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस संसदीय दल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर दिल्ली पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत की।
हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। यहाँ के पुलिस वालों ने कल हमारे एमपीस के साथ इस तरीके की बर्ताव किए हैं कि लगता है हम सारे कांग्रेस की एमपी और कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आतंकवादी बन चुके हैं।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के दल ने वेंकैया नायडू से मुलाकात कर संरक्षण की मांग की।
We have appealed to the honorable chairman to take action.
हमने माननीय सभापति से कहा है कि वो विशेष अधिकार हनन के मामले में कार्रवाई करें और कानून को अपना काम करने दें। ये मामला विशेष अधिकार समिति के पास जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। वे किसी भी नागरिक के साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते, चुने हुए नुमाइंदों के साथ तो कतई नहीं, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है।
अपने नेताओं के साथ हो रही ज्यादती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कई राज्यों के गवर्नर हाउस का घेराव किया। 17 जून को राहुल गांधी की एक बार फिर ईडी के सामने पेशी होनी है। ऐसे में कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान की आशंका बनी हुई है।
नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।